एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगी।
हाँ बिल्कुल, ये जार्विस जे मास्टर्स की आत्मकथा है। किताब का नाम है दैट बर्ड हैज माई विंग्स, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इनोसेंट मैन ऑन डेथ रो। ये 2009 में आई थी और ये सिर्फ किसी की जिंदगी की कहानी नहीं है, बल्कि ये उम्मीद, बदलाव और इंसान की अंदरूनी ताकत की एक बहुत गहरी कहानी है।
और वो भी एक ऐसी जगह से आ रही है ये कहानी जहां से उम्मीद करना ही मुश्किल है, डेथ रो से।
हाँ, डेथ रो। जार्विस जे मास्टर्स के बारे में थोड़ा बताएं, कौन है ये?
जार्विस जे मास्टर्स एक अफ्रीकी अमेरिकी लेखक है, बौद्ध धर्म का अभ्यास करते हैं और पिछले करीब 30 साल से भी ज्यादा वक्त से कैलिफोर्निया की सैन क्वेंटिन जेल की डेथ रो, मतलब जहां मौत की सजा पाए कैदी रखे जाते हैं, वहां हैं।
30 साल से ज्यादा, किस जुर्म में?
उन्हें एक जेल गार्ड की हत्या की साजिश रचने के जुर्म में मौत की सजा मिली थी, लेकिन ये एक ऐसा जुर्म है जिसके लिए वो लगातार कहते आए हैं कि वो बेगुनाह हैं, उन्होंने ये नहीं किया।
अच्छा, यही बात तो मतलब हिला देती है ना। एक आदमी जिसे मौत की सजा मिली है, वो अपनी बेगुनाही की लड़ाई लड़ रहा है।
हाँ,
जेल के अंदर से, और उसी वक्त वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से जिंदगी का असली मतलब भी सीख रहा है।
बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी और पावरफुल कहानी है। ये कई मुश्किल मुद्दों को एक साथ छूती है, जैसे हमारे समाज में नस्ल भेद, बचपन में मिले जख्म जो कैसे पूरी जिंदगी असर डालते हैं, फिर कैसे इंसान आध्यात्मिक रूप से जाग सकता है और कैसे, मतलब सबसे मुश्किल हालात में भी इंसान एक तरह की अंदरूनी आजादी पा सकता है।
ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जुर्म क्या है, सजा क्या होनी चाहिए, बेगुनाही का क्या मतलब है।
सही कहा। और क्या वाकई मतलब बिल्कुल अंधेरे में भी बदलाव मुमकिन है? एक तरह से ये कहानी अमेरिकी न्याय व्यवस्था पर एक सवालिया निशान भी है।
हाँ,
और दूसरी तरफ इंसान की हिम्मत उसकी अदम्य इच्छा शक्ति की एक मिसाल भी है।
तो चलिए फिर कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। जार्विस मास्टर्स की जिंदगी के सफर को समझने की कोशिश करते हैं। जन्म हुआ 1962 में कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच में। माहौल कैसा था उनके बचपन का?
माहौल बहुत मुश्किल था, गरीबी थी, नशा था आसपास, और एक ऐसा सिस्टम था जो अक्सर लोगों को, खासकर हाशिए पर रहने वालों को, नज़रअंदाज कर देता है।
परिवार का क्या हाल था?
उनकी माँ हेरोइन की आदी थी, पिता थे नहीं, तो घर का माहौल आप सोच सकते हैं, बिल्कुल बिखरावा, अस्थिर था, कोई ठहराव नहीं था।
और फिर वो फॉस्टर केयर वाली बात?
हाँ, वो शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनके बचपन का। जब वो सिर्फ 4 साल के थे तो उन्हें और उनके भाई बहनों को उनकी माँ से अलग करके कैलिफोर्निया के फॉस्टर केयर सिस्टम में डाल दिया गया।
4 साल की उम्र में?
हाँ, और अपने भाई बहनों से ये जुदाई, ये उनके लिए एक बहुत गहरा सदमा था, एक ऐसा जख्म जिसने शायद उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही मोड़ दी।
और क्या ये फॉस्टर केयर सिस्टम उन्हें वो स्थिरता दे पाया जिसकी उन्हें जरूरत थी?
नहीं, दुर्भाग्य से बिल्कुल नहीं। उन्हें लगातार एक घर से दूसरे घर भेजा जाता रहा, इससे उनके मन में यह बात बैठ गई कि वो कहीं के नहीं हैं, किसी को उनकी जरूरत नहीं है, वो बस अस्थाई हैं।
वो अपनेपन और सुरक्षा की भावना वो मिली नहीं?
बिल्कुल नहीं। तो नतीजा क्या हुआ? उन्होंने सड़कों पर जीना सीखा, जिंदा रहने के लिए जो चालाकी, जो लचीलापन चाहिए होता है, वो उन्होंने वहीं से सीखा।
और जब घर का सहारा ना हो, कोई सही रास्ता दिखाने वाला ना हो, तो भटकना आसान हो जाता है।
हाँ बिल्कुल, कोई मजबूत रिश्ता नहीं था, कोई पॉजिटिव रोल मॉडल नहीं था, तो वो ऐसे बड़े लड़कों और किशोरों के साथ उठने बैठने लगे जो पहले से ही छोटे मोटे अपराधों में शामिल थे।
अच्छा,
और यहीं से उनकी भी शुरुआत हुई। स्कूल की पढ़ाई तो वैसे भी छूटती जा रही थी क्योंकि वो लगातार घर बदल रहे थे और सड़कों पर ज्यादा वक्त बिताते थे।
और फिर ये छोटे मोटे अपराध कब बड़े जुर्म बन गए?
किशोरावस्था आते आते ये चीजें बढ़ने लगीं, छोटी चोरियों से बात ज्यादा गंभीर अपराधों तक पहुंच गईं। शायद ये उनकी जरूरतें पूरी करने का या समाज में अपनी पहचान बनाने का एक गलत तरीका था, एक हताश कोशिश। 19 साल की उम्र तक तो वो कई बार जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर्स और काउंटी जेलों में आ जा चुके थे और इन अनुभवों ने उन्हें और ज्यादा कठोर बना दिया।
और फिर
वो सैन क्वेंटिन कैसे पहुंचे जो इतनी कुख्यात जेल है?
कुछ हथियारबंद डकैतियों के मामलों में उन्हें सजा हुई और उन्हें सैन क्वेंटिन स्टेट प्रिजन भेज दिया गया। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे दुखद मोड़ तो अभी आना बाकी था।
वो क्या था?
1985 में सैन क्वेंटिन में एक बड़ा दंगा हुआ। उसमें सार्जेंट हॉवल बर्चफील्ड नाम के एक सुधार अधिकारी की हत्या कर दी गई।
लेकिन आपने कहा था कि मास्टर्स शायद उस वक्त वहां थी नहीं, मतलब सीधे तौर पे?
हाँ, यही तो इस केस का सबसे पेचीदा और विवादित पहलू है। मास्टर्स उस वक्त एक बिल्कुल अलग सेल ब्लॉक में बंद थे, लेकिन उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने हत्या के लिए इस्तेमाल होने वाला हथियार, मतलब एक तरह का चाकू या सुआ, बनाया और उसे किसी तरह उस कैदी तक पहुंचाया जिसने असल में हत्या की थी।
मतलब साजिश का आरोप लगा?
हाँ, हत्या की साजिश रचने का आरोप, जबकि वो सीधे तौर पर उस घटना में शामिल नहीं थे।
और सजा किस आधार पर हुई? क्या सबूत थे?
ज्यादातर सबूत दूसरे कैदियों की गवाहियां थी, और इनमें से भी कई गवाहों ने बाद में अपनी गवाही वापस ले ली।
क्या, गवाही वापस ले ली?
हाँ, उन्होंने बाद में कहा कि जेल अधिकारियों ने उन पर दबाव डाला था, धमकाया था कि वो मास्टर्स के खिलाफ बयान दे।
लेकिन फिर भी उन्हें सजा होगी?
हाँ, इन सब बातों के बावजूद 1990 में जूरी ने उन्हें हत्या की साजिश का दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। उन्हें डेथ रो में शिफ्ट कर दिया गया।
ये तो मतलब यकीन करना मुश्किल है, डेथ रो पर जाना। किसी के लिए भी ये तो जैसे जिंदगी का अंत ही हो गया। वहां उनके शुरुआती साल कैसे रहे होंगे?
जाहिर है बहुत भयानक। गुस्सा, बेबसी, निराशा, शायद यही भावनाएं हावी रही होंगी। ऐसा लगता होगा कि अब सब खत्म, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यहीं पर बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से कहानी एक नया मोड़ लेती है।
वो कैसे, क्या हुआ ऐसा?
एक दिन उन्हें जेल की लाइब्रेरी में बौद्ध धर्म पर एक किताब मिली।
बौद्ध धर्म पर, डेथ रो पर?
हाँ, शुरू में तो उन्हें बहुत शक हुआ होगा, शायद अजीब भी लगा होगा, लेकिन उनके पास वक्त था और शायद अंदर ही अंदर कोई तलाश भी थी, तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया।
और उन शिक्षाओं में उन्हें कुछ मिला, कुछ कनेक्ट हुआ?
हाँ, उन्हें लगा कि ये जो बातें हैं, ये फलसफा, ये सीधे उनके अपने दुख, उनकी अपनी तकलीफ से बात कर रहा है। बौद्ध दर्शन दुख को समझता है, उसे स्वीकार करता है और उससे उभरने के, या शायद उसके साथ शांति से जीने के प्रैक्टिकल तरीके बताता है।
ये कोई उपदेश जैसा नहीं लगा होगा, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल लगा होगा।
बिल्कुल, ये कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं लगी, बल्कि उनके अपने अनुभव से जुड़ रही थी।
तो क्या ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी?
हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे जैसे वो बौद्ध ध्यान, माइंडफुलनेस, इन चीजों का अभ्यास करने लगे, उन्होंने लिखना शुरू किया।
लिखना?
हाँ, पहले बस चिट्ठियां लिखते थे दोस्तों को या जो भी उनसे संपर्क करता था, फिर धीरे धीरे निबंध लिखने लगे और आखिरकार उन्होंने अपनी पूरी कहानी, ये आत्मकथा लिखी, दैट बर्ड हैज माई विंग्स।
कमाल है, डेथ रो से एक लेखक का जन्म।
हाँ, और उनके लेखन ने धीरे धीरे बाहर की दुनिया का ध्यान खींचा। जो मशहूर बौद्ध शिक्षिका हैं पेमा चोड्रोन और दूसरे कई लोगों को उनके बारे में पता चला, वो डेथ रो की कोठरी से ही एक लेखक, एक आध्यात्मिक आवाज और न्याय के लिए लड़ने वाले एक वकील के तौर पर उभर कर सामने आए।
और उन्होंने सिर्फ लिखा ही नहीं, और भी कुछ किया?
हाँ, उन्होंने कई लेख प्रकाशित किए, जो रेस्टोरेटिव जस्टिस के कार्यक्रम होते हैं, यानी सुधार वाले न्याय के, उनमें भी हिस्सा लिया। ये वो तरीका है जहाँ जुर्म से हुए नुकसान को ठीक करने पर जोर होता है, सिर्फ सजा देने पर नहीं। इसमें पीड़ित और अपराधी दोनों की भागीदारी होती है।
अच्छा, और आज उनकी क्या स्थिति है? क्या वो अभी भी?
हाँ, वो आज भी डेथ रो पर ही हैं, लेकिन अंदर से उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। वो रोजाना ध्यान का कठोर अभ्यास करते हैं, लगातार लिखते रहते हैं और दुनिया भर में अनगिनत लोगों से चिट्ठियों के जरिए जुड़े हुए हैं। भविष्य अनिश्चित है, मौत की सजा अभी भी सर पर है, लेकिन उन्होंने अपने अंदर एक तरह की शांति, एक मकसद ढूंढ लिया है।
और उनकी कानूनी लड़ाई, क्या वो खत्म हो गई है?
नहीं, वो भी चल रही है। नए सबूत सामने आए हैं, गवाहों ने अपने पुराने बयान आधिकारिक तौर पर वापस लिए हैं, तो उनकी बेगुनाही के दावे को और बल मिला है। लड़ाई जारी है।
उनकी कहानी वाकई ये दिखाती है कि इंसान अपने अतीत का या अपने हालातों का कैदी नहीं होता, बदलाव, गहरा बदलाव मुमकिन है।
बिल्कुल सही कहा, उनकी विरासत यही है। उन्होंने अपने अतीत को नकारा नहीं, बल्कि उससे सीखा और खुद को बदला। ये कहानी हमें दिखाती है कि सबसे ज्यादा नाउम्मीद हालातों में भी इंसान अंदरूनी तौर पर आजाद हो सकता है, बदल सकता है।
ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं रहा होगा, है ना? उनके सोचने का तरीका, दुनिया को देखने का नजरिया, वो भी तो बदला होगा।
हाँ, जाहिर है। शुरुआत में उनका नजरिया कैसा था? उन्हें लगता था कि दुनिया एक जंग का मैदान है, हर कोई दुश्मन है, शिकारी है। जिंदा रहने के लिए आपको भी आक्रामक होना पड़ेगा, किसी पर भरोसा नहीं करना पड़ेगा, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। वो खुद को बस हालात का मारा हुआ एक शिकार मानते थे।
ये समझ आता है, उनके बचपन और जो कुछ उन्होंने झेला उसे देखते हुए तो ये स्वाभाविक लगता है।
हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर बौद्ध धर्म ने उन्हें एक बिल्कुल अलग नजरिया दिया।
वो क्या था?
उन्हें समझ आया कि दुनिया आपस में जुड़ी हुई चीजों का एक जाल है, हर चीज का एक कारण होता है और उसका एक असर होता है, जिसे हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं।
कर्म?
हाँ, ये कोई दैवीय इंसाफ जैसा नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है कि हमारे विचार, हमारे काम, उनका नतीजा हमें मिलता है और दूसरों पर भी उसका असर होता है। इससे उन्हें एक नई समझ मिली। वो उन लोगों के दुख को भी देखने लगे जिन्होंने उन्हें तकलीफ पहुंचाई थी,
जैसे कि उनकी माँ या फॉस्टर के वाले लोग।
हाँ, वो समझने लगे कि वो लोग भी शायद अपने दुखों, अपनी परिस्थितियों के शिकार थे। इससे उनका गुस्सा धीरे धीरे कम हुआ
और उसकी जगह करुणा ने ली, हमदर्दी ने।
हाँ, एक गहरी भावुक करुणा ने। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी अपनी आजादी, उनकी अपनी मुक्ति बाकी सभी की मुक्ति से जुड़ी हुई है। उन्होंने एक और बहुत जरूरी चीज सीखी, अपनी सोच और अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेना।
मतलब?
मतलब ये कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, हम उनके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं ये हमारे हाथ में है। क्या हम गुस्से से प्रतिक्रिया देते हैं या समझ और करुणा से? इसे वो रेडिकल सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, अपने मन की स्थिति की पूरी जिम्मेदारी लेना। असली आजादी यही है।
और उनकी प्रेरणाएं जो चीजें उन्हें चलाती थी वो भी बदली होंगी। पहले तो शायद सिर्फ जिंदा रहना ही मकसद रहा होगा।
हाँ बिल्कुल, शुरू में प्रेरणाएं बहुत बुनियादी थीं, बस किसी तरह जिंदा रहना, शारीरिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी, जिसके लिए उन्होंने अपने चारों तरफ एक सख्त खोल बना लिया था। और कहीं अपनापन ढूंढना, शायद जुर्म और गैंग की दुनिया में जाना भी इसी अपनेपन और ताकत की तलाश का एक भटकावा रास्ता था, और नाइंसाफी के खिलाफ एक गहरा गुस्सा भी था।
और डेथ रो पर पहुंचने के बाद ये कैसे बदला?
डेथ रो पर फोकस बाहरी दुनिया से हटकर पूरी तरह अंदरूनी दुनिया पर आ गया। अब सबसे बड़ी प्रेरणा बनी सच्चाई की खोज, कानूनी सच्चाई भी कि वो बेगुनाह है, और आध्यात्मिक सच्चाई भी कि जीवन का अर्थ क्या है, दुख क्या है, मुक्ति क्या है। वो उस गहरे जख्म को भरना चाहते थे जो बचपन से उनके साथ था, और लिखना, लिखना उनके लिए एक केंद्रीय प्रेरणा बन गया, अपने अतीत को समझने का जरिया, सिस्टम की नाकामियों को दुनिया के सामने लाने का जरिया, और अपनी कहानी से दूसरों को उम्मीद देने का जरिया। उनका ध्यान खुद को बचाने से हटकर दूसरों की सेवा करने पर चला गया।
मुश्किलों का सामना करने का उनका तरीका भी बदल गया होगा। पहले शायद वो लड़ते होंगे, भिड़ते होंगे।
हाँ, उनका शुरुआती तरीका बहुत रिएक्टिव था। वो हर चीज पर तुरंत आक्रामक प्रतिक्रिया देते थे, जिसका नतीजा ये होता था कि वो और ज्यादा फंसते चले जाते थे।
और बौद्ध अभ्यास ने इसमें क्या मदद की?
बौद्ध अभ्यास ने उन्हें सिखाया कि मुश्किल भावनाओं जैसे गुस्सा, डर, निराशा से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके साथ शांति से बैठना सीखना है।
बैठना मतलब?
मतलब ध्यान के जरिए अपनी भावनाओं को बस देखना, जैसे वो उठ रही हैं और जैसे वो शांत हो रही हैं, बिना उनमें बहे, बिना उनसे अपनी पहचान जोड़े। ये समझना कि ये भावनाएं बस मन की अस्थाई लहरें हैं जो आती जाती रहती हैं।
अच्छा।
इससे उन्हें भारी तूफान के बीच भी अंदर एक शांति का कोना मिला। मुश्किलें खत्म नहीं हुई, जाहिर है डेथ रो पर मुश्किलें कैसे खत्म होंगी, लेकिन उन मुश्किलों की उन्हें कंट्रोल करने की ताकत कम हो गई। उन्होंने अपनी मौत की सजा को ही अपना सबसे बड़ा गुरु मान लिया।
ये तो बहुत गहरी बात है।
हाँ, उन्होंने हालातों को स्वीकार करना सीखा, सजा को नहीं बल्कि उस पल की जो सच्चाई थी उसे। इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहते हैं।
अगर हम उनकी पूरी जिंदगी को देखें तो ऐसे कौन से तीन पल या मोड़ लगते हैं जिन्होंने उनकी कहानी की दिशा बिल्कुल बदल दी?
ये चुनना हमेशा मुश्किल हो पाए, लेकिन हाँ, शायद तीन बहुत अहम मोड़ कहे जा सकते हैं। पहला, वो 4 साल की उम्र वाला पल जब उन्हें अपने भाई बहनों से अलग किया गया।
हाँ, वो तो बुनियाद हिला देने वाला था।
बिल्कुल, वो उनकी जिंदगी का सबसे गहरा, सबसे पहला आघात था। इसने प्यार और अपनेपन का जो इकलौता धागा था उससे तोड़ दिया। इसने उनके अंदर कभी न भरने वाला अकेलापन और असुरक्षा का भाव पैदा किया, और यहीं से परिवार और सुरक्षा की वो हताश तलाश शुरू हुई जिसने उन्हें गलत रास्तों पर धकेला।
ये तो वाकई पहला निर्णायक मोड़ था, दूसरा कौन सा मानेंगे?
दूसरा शायद 1990 में मिली मौत की सजा। ये उनके अस्तित्व पर एक सीधा हमला था। इसने उन्हें निराशा की उस खाई में धकेल दिया जहां बाहर की कोई उम्मीद नहीं बचती। भविष्य का दरवाजा जैसे बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन अजीब बात है कि इसी नाउम्मीदी ने, इसी भविष्य के छिन जाने ने उन्हें मजबूर किया कि वो सिर्फ वर्तमान पल में जिएं, और यही उनके अंदरूनी बदलाव के लिए सबसे बड़ा कैटलिस्ट, सबसे बड़ा उत्प्रेरक बना। इसने उन्हें बौद्ध दर्शन जैसे अंदरूनी समाधानों के लिए पूरी तरह खोल दिया। जब बाहर कुछ नहीं होता तो इंसान अंदर झांकता है।
ये विरोधाभास है पर सच है। और तीसरा अहम मोड़?
तीसरा मोड़ था बौद्ध धर्म की खोज, और उसमें भी शायद सबसे खास पल था जब उनकी मुलाकात तिब्बती लामा चकदुत तुल्कुर रिनपोछे से हुई। ये उनका आध्यात्मिक टर्निंग पॉइंट था।
ऐसा क्या खास था उस मुलाकात में?
रिनपोछे ने जार्विस को एक मुजरिम की तरह नहीं देखा, उन्होंने उसे दुख के चक्र में फंसे एक साथी इंसान की तरह देखा। उन्होंने जार्विस को ध्यान और करुणा के प्रैक्टिकल तरीके सिखाए, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी शर्त के उन्हें अपनाया, उन्हें स्वीकार किया। इस मुलाकात ने जार्विस के अंदर जो आध्यात्मिक अंकुर फूट रहा था उसे एक मजबूत जमीन दी, एक इंसानी रिश्ता दिया। इससे उन्हें यकीन हुआ कि हाँ, जीने का एक अलग, ज्यादा शांत, ज्यादा करुणामय तरीका मुमकिन है, इसी डेथ रो पर भी।
इन तीन मोड़ों को देखकर लगता है कि कैसे जिंदगी की सबसे बड़ी चोटें और सबसे बड़ी मुश्किलें ही कई बार बदलाव के सबसे बड़े कारण बन जाती हैं।
हाँ बिल्कुल, और जार्विस मास्टर्स की ये जो कहानी है, उनके संघर्ष और उनकी जीत, इसमें हम सब के लिए आज के दौर में भी बहुत गहरे सबक छिपे हैं।
जैसे ही?
क्या खास बातें जो हम सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि बचपन के जख्म, बचपन का आघात कितना गहरा असर डाल सकता है पूरी जिंदगी पर। लेकिन साथ ही ये कहानी ये उम्मीद भी देती है कि उन जख्मों से उभरना, उनसे हीलिंग पाना मुमकिन है, चाहे कितना भी वक्त लगे, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो।
और दूसरी बात?
दूसरी बात ये कि इंसान की जो क्षमता है अर्थ खोजने की, मकसद ढूंढने की, वो कमाल की है। सबसे ज्यादा निराशाजनक हालात में भी, जैसे मौत का इंतजार करते हुए भी, इंसान अपनी जिंदगी को एक मतलब दे सकता है, एक उद्देश्य ढूंढ सकता
और
है।
ये विचार कि हम अपनी गलतियों से परिभाषित नहीं होते।
बिल्कुल, ये कहानी इस बात पर बहुत जोर देती है कि लोग बदल सकते हैं, उनमें गहरे परिवर्तन की क्षमता होती है। हम किसी को उसकी सबसे बुरी गलती के आधार पर हमेशा के लिए खारिज नहीं कर सकते।
पर ये आजादी वाली बात कि सच्ची आजादी क्या है?
हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल उठाती है। क्या आजादी सिर्फ बाहरी दीवारों का ना होना है, या ये हमारे मन की एक स्थिति है? क्या कोई जेल की कोठरी में बंद होकर भी अंदर से आजाद महसूस कर सकता है? जार्विस की कहानी कहती है हाँ।
ये वाकई सोचने वाली बात है। और जिम्मेदारी और करुणा का संतुलन?
हाँ, ये भी एक अहम सबक है, अपने कामों की जिम्मेदारी लेना, और साथ ही अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, खुद के लिए और दूसरों के लिए हमदर्दी रखना, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। ये एक बहुत मुश्किल संतुलन है, लेकिन शायद यही इंसानियत की तरफ ले जाता है।
तो इस पूरी बातचीत के बाद अगर हमें तीन सबसे खास बातें, तीन निचोड़ निकालने हो इस कहानी से, तो वो क्या होंगी?
तीन बातें।
ठीक है।
पहली, एक भावनात्मक सीख। मेरे ख्याल से वो ये है कि सबसे गहरे भावनात्मक जख्म भी, जैसे बचपन में अकेला छोड़ दिया जाना या बुरा बर्ताव सहना, सचेत कोशिश और करुणा के अभ्यास से भरे जा सकते हैं। एक डरा हुआ, सहमा हुआ बच्चा एक शांत, समझदार वयस्क बन सकता है। ये बदलाव मुमकिन है, ये जानना ही बहुत बड़ी बात है।
ये वाकई भावनात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली है। और अगर दिमागी तौर पर एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि की बात करें,
बौद्धिक स्तर पर मुझे लगता है सबसे अहम सीख कर्म के सिद्धांत की गहरी और प्रैक्टिकल समझ है। ये सिर्फ कोई किताबी या धार्मिक बात नहीं है, बल्कि कारण और असर का एक सीधा साधा नियम है जो हर पल काम कर रहा है। हम अपने अतीत के कैदी नहीं है, हम आज इस पल में अपनी सोच और अपने कामों से नए कारण पैदा कर सकते हैं, जैसे ध्यान, करुणा, समझदारी, और इनसे अपने आने वाले कल पर, अपने अनुभव पर असर डाल सकते हैं। ये हमें शिकार होने की भावना से निकालकर कर्ता होने की शक्ति देता है।
और सकें एक यूनिवर्सल सबक,
सबसे प्रैक्टिकल और यूनिवर्सल सबक शायद यही है कि सच्ची आजादी एक अंदरूनी स्थिति है। बाहर के हालात हमेशा हमारे काबू में नहीं होते। लेकिन हम सब अपनी अपनी जेलों का अनुभव करते हैं। कभी नाराजगी की जेल, कभी पुराने अफसोस की, कभी भविष्य की चिंता की। जार्विस मास्टर्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि मुक्ति की चाबी हमेशा बाहरी दीवारें तोड़ने में नहीं होती, बल्कि उन दीवारों के अंदर रहते हुए भी अपने मन की जगह को, अपने अंदरूनी स्पेस को आज़ाद करने में होती है। आज़ादी मन की होती है, परिस्थितियों की नहीं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।